आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। आरबीआई बोर्ड ने माली साल 2024-25 के लिए मरकजी हुकूमत को 2.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मुनाफे की मुंतकली की मंजूरी दे दी है। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर फजाई हदूद में दाखिल होने पर आयत बंदिश की मुद्दत में 23 जून तक तौसी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर अंदर सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज में काडरों का जायजा लेने का हुक्म दिया है। अमरीका की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के उस हुक्म पर आरजी तौर पर रोक लगा दी है, जिसके तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर यह बंदिश आयद कर दी गई थी कि वो बैन अलावी तलबा का इंदराज ना करे। और भारत के नेजा फेंकने वाले मायनाज एथलीट नीरज चोपड़ा ने पोलैंड के शहर चोरोज में जानसूस कोसोसिंग की यादगारी मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एड 2047। गवर्निंग काउंसिल में मज़कूरा मौजू के नुक्ते नज़र पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के वज़रा आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, मरकजी वज़रा और नीति आयोग के CEO, नायब चेयरमैन और अराकीन शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग मुल्क को दरपेश तरक्याती चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में रियासतों के रोल पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। इंटरप्रेन्योरशिप, हुनरमंदी के फरोग और पूरे मुल्क में रोजगार के पायदार मौके पैदा करने से मुतालिक इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के ख्याल का मकसद कौमी तरजीहात से हमांग रहते हुए रियासतों को जुरतमंदाना, तवील मुद्दती और शमूलियत वाले विजन दस्तावेज तश्किल देने की हौसला अफजाई करना है। इन विजन्स को मुकर्रा मुद्दत में अपने आदाब को हासिल करने को यकीनी बनाया जाएगा। नई दिल्ली से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने माली साल 2024-25 के लिए 2.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की मरकजी हुकूमत को रिकॉर्ड इजाफी रकम के तौर पर मुंतकली की मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुंबई में बोर्ड की एक मीटिंग के दौरान किया गया, जिसकी सदारत RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। बोर्ड ने घरेलू और आलमी इक्तिसादी मंजरनामे का जायजा भी लिया और मुतालिका साल के लिए RBI की सालाना रिपोर्ट और माली तफसीलात को मंजूरी दी। इजाफी रकम का हिसाब किताब माली असासे के नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क के तहत किया जाता है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय सिफारती रसाई के तौर पर कसीर जमाती 4 वफूद के अरकान को जानकारी फराहम की है। जनाब मिश्री ने कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर, बीजेपी रहनुमा रविशंकर प्रसाद, NSPSP रहनुमा सुप्रिया सूले और बीजेपी रहनुमा बैजयंत पांडा की क्यादत वाले वफूद को ये जानकारी फराहम की। कल कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने जानकारी हासिल करने के बाद कहा कि भारत सभी बैरूनी मुजाकरातकारों से भयानक दहशतगर्दी के बारे में बातचीत करेगा, जिसका कि वो सरहद पार से 1989 से शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त तफसील बताएगा कि भारत के साथ असल में क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में इन दहशतगर्दाना हमलों से कैसे निपटा जाए।
सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। हमारे तरफ से यही संदेश होगा, हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। जो भी हमने सह लिया सालों से इसके बारे में बोलने के लिए।
बीजेपी रहनुमा बैजयंत पांडा ने इस जानकारी को बहुत ही कारामद बताया। उन्होंने कहा कि भारत में इस सिलसिले में जो इत्तेहाद देखा जा रहा है वो निहायत जरूरी है और मुल्क के इस पैगाम को दुनिया तक ले जाने के बारे में एक मुफाहमत और अज़्म पाया जाता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है।
एनसीपी शरद पवार की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ है और इसे हरगिज बर्दाश्त ना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा।
भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे हैं वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीय हैं और अब भारतीय रहेंगे और हम बाहर जाके भारत जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है।
जैसा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, कौम भारतीय फौजियों की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्ला फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम याद करेंगे परमवीर चक्र से सरफराज लांस नायक एल्बर्ट एक्का, जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान मुल्क के लिए अजीम तरीन कुर्बानी दी। पेश है एक रिपोर्ट।
गोवा की सियाहत और बुनियादी ढांचे के मंजरनामे को तकवियत पहुंचाते हुए, माफ कीजिए रिपोर्ट हम नहीं सुनवा पा रहे हैं।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर भारतीय फजाई हदूद में दाखिल होने पर आयत बंदिश की मुद्दत में 23 जून तक तौसी कर दी है। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी तैयारों समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस के जरिए किराए पर लिए गए या मिल्कियत वाले पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी तैयारे को भारतीय फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू किंजारपो ने कहा कि सूरत हाल को जूं का तूं बरकरार रखने के लिए भारत ने नोटम में तौसी की है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यह कहते हुए पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है कि उसे कई दहाइयों से सरहद पार से पाकिस्तान की अयानत वाले दहशतगर्दाना हमलों का सामना है। यह रायजनी अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे सिफारतकार पर्वत नैनी हरीश ने मुसल्ला तनाज़ात के दौरान सिविल लोगों की हिफाजत के बारे में खुली बहस के दौरान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए बार बार शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है।
I'm constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community.
जनाब हरीश ने हालिया वाकयात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज ने इस महीने के शुरू में भारत के सरहदी गांवों को जानबूझकर निशाना बनाया।
Earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear, protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it.
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए कौम भारतीय फौजियों की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्ला फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम याद करेंगे परमवीर चक्र से सरफराज लांस नायक एल्बर्ट एक्का, जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान मुल्क के लिए अजीम तरीन कुर्बानी दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1942 में रांची में पैदा हुए लांस नायक एल्बर्ट एक्का दिसंबर 1962 में 14 गार्ड्स में शामिल हुए। 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान 14 गार्ड्स को मशरकी सेक्टर में अगरतला के मगरिब में 6.5 किलोमीटर फासले पर वाकई गंगा सागर पर पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया। भारतीय दस्ते को जबरदस्त गोलाबारी का सामना करना पड़ा। लांस नायक इक्का ने देखा कि एक बंकर से दुश्मन की मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है और उनकी बटालियन को जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने बंकर पर हमला कर दिया। उन्होंने दुश्मन के 2 सिपाहियों को हलाक करते हुए मशीन गन को खामोश कर दिया। शदीद जख्मी होने के बावजूद लांस नायक एल्बर्ट इक्का एक के बाद एक बंकर को निशाना बनाते रहे और आखिरकार शहीद हो गए। उन्हें बाद अज़मर्ग परमवीर चक्र से सरफराज किया गया। उनकी शुजात और मुसम्मम इरादे को हमेशा याद रखा जाएगा। قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
سپریم کورٹ نے سبھی مرکزی مسلح فورسز سی اے پی ایفز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر اپنے کارڈروں کا جائزہ لیں. ان فورسز نے آئی ٹی بی پی، بی ایس ایف، سی آر پی ایف، سی آئی ایس ایف اور ایس ایس پی شامل ہیں. اصل میں یہ جائزہ 2021 میں لیا جانا تھا لیکن اس میں تاخیر ہو گئی. جسٹس ابھے ایس اوکا اور اجول بھویان کی ایک بینچ نے عملے اور تربیت کے محکمے کو ہدایت دی کہ وہ وزارت داخلہ کی طرف سے کی گئی کارڈر جائزے سے متعلق کارروائی اور سروس سے متعلق موجودہ ضابطوں اور بھرتی ضابطوں کے جائزے کی رپورٹ حاصل ہونے کے 3 ماہ کے اندر اندر کوئی مناسب فیصلہ کرے. 21 جون کو یوگا کا بین الاقوامی دن 2025 کے تناظر میں مرکز کے زیر انتظام لداخ انتظامیہ نے 15 سے 21 جون تک یوگا فیسٹیول منائے جانے کا اعلان کیا ہے. اس کا موضوع ہوگا یوگا اور میڈیٹیشن کا بین الاقوامی فیسٹیول. یہ فیسٹیول لداخ کے متعدد مقامات پر منعقد کیا جائے گا. پینگ پونگ جھیل، شانتی استوپا، سندھو گھاٹ پر دریائے سندھ کا کنارہ، نوبرا وادی سمیت دلکش قدرتی مناظر اور پرسکون مقامات کو 1 ہفتے جاری رہنے والے فیسٹیول کے دوران یوگا سیشنز کے لیے چنا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
لداخ کے انتہائی خوبصورت مقامات پر یہ فیسٹیول منائے جانے کے بعد فیسٹیول کی اختتامی تقریب 21 جون کو یوگ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایسٹرو ٹرف اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. یہ ملک کا سب سے زیادہ بلندی پر واقع فٹ بال اسٹیڈیم ہے. اس عظیم الشان فیسٹیول کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں. یہ فیسٹیول مرکز کے تحت انتظامیہ اور مہا بودھی بین الاقوامی میڈیٹیشن سینٹر کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا.
امریکہ کی ایک عدالت نے میساچوسٹس ریاست میں ٹرمپ انتظامیہ کے اس حکم پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے جس میں ہارورڈ یونیورسٹی کا بین الاقوامی طلبہ کا اندراج کرنے کا سرٹیفیکیشن ختم کر دیا گیا تھا. عدالت نے یہ فیصلہ داخلی محکمے ڈی ایچ ایس کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی کا وہ سرٹیفیکیٹ منسوخ کرنے کے 1 دن بعد سنایا ہے جسے یہ یونیورسٹی آئی وی لیگ اسکول میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیے گئے حملے پر پیدا ہونے والی کشیدگی میں طلبہ اور وزٹرس کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. بھارت کے نیزہ پھینکنے والے مائناز کھلاڑی نیرج چوپڑا نے پولینڈ کے شہر شروزو میں جاری جنسز 2025 کوسو سنکی میموریل میٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا نے چیلنج سے پر ماحول میں اپنی 6ٹی اور آخری کوشش میں 84.14 میٹر نیزہ پھینکا ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد.
شکریہ شبانم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے نارتھ ایسٹ انویسٹر سمٹ سے وزیر اعظم کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے نارتھ ایسٹ انویسٹر سمٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کا امن و استحکام کی اہمیت پر زور، کہا کہ تشدد کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر حکومت عمل پیرا. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے بنگلہ دیش میں پھر سیاسی اتھل پتھل کا اندیشہ، محمد یونس نے عبوری سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی. اخبار ملاب نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ پاکستان مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے، آپریشن سندور پاکستان اور دہشت گردوں کو سخت پیغام. اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امن اروڑا بدعنوانی کے معاملے میں گرفتار.
آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے. آر بی آئی بورڈ نے مالی سال 2024-25 کے لیے مرکزی حکومت کو 2.68 لاکھ کروڑ روپے کے ریکارڈ منافع کی منتقلی کی منظوری دے دی ہے. بھارت نے پاکستانی طیاروں پر فضائی حدود میں داخل ہونے پر عائد بندش کی مدت میں 23 جون تک توسیع کر دی ہے. سپریم کورٹ نے 6 مہینے کے اندر اندر سبھی مرکزی مسلح پولیس فورسز میں کارڈروں کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے. امریکہ کی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس حکم پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے جس کے تحت ہارورڈ یونیورسٹی پر یہ بندش عائد کر دی گئی تھی کہ وہ بین الاقوامی طلبہ کا اندراج نہ کرے. اور بھارت کے نیزہ پھینکنے والے مائناز ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے پولینڈ کے شہر چوزرو میں جنسوس کوسنکی یادگاری مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے